हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य मन जीवन शरीर धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा ऐश्वर्य बल स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कामम हित रोगम। भौतिकतावादी जीवन का अर्थ ही होता है कि मनुष्य काम इच्छा नामक भयंकर रोग से पीड़ित है। मुक्ति का अर्थ है काम इच्छा से मुक्त होना, क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करना पड़ता है। अतः उसकी काम इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, वह उन्हें पूरी करने के लिए बारंबार जन्म लेता है। अतः भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य विभिन्न कार्य करता है और अनेक प्रकार के शरीर धारण करके कभी ना तुष्ट होने वाली इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। इसकी एकमात्र औषधि है भक्ति स्वीकार करना, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर प्रारंभ होती है। अन्य अभिलाषिता शून्य। अन्य अभिलाषिता का अर्थ है भौतिक इच्छा और शून्यम का अर्थ है से मुक्त। आध्यात्मिक जीव के कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और इच्छाएं भी आध्यात्मिक होती हैं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदाद भक्ति रहे कुकीद्वयी। भगवान की अनन्य भक्ति ही एकमात्र आध्यात्मिक इच्छा है, किंतु इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इच्छा राहित्य का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। श्री रूप गोस्वामी ने इसे अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा है। तब जीवन का सारा साथ समान, जिसमें मनुष्य की इंद्रियां शरीर धर्म धैर्य तथा बुद्धि सम्मिलित है, मूल कृष्ण चेतना से विपत हो जाता है। भौतिक इच्छाओं के उदय होते ही मनुष्य अपने इंद्रियों का तथा बुद्धि का उपयोग भगवान की तुष्टि के लिए सही ढंग से नहीं कर पाता। मायावादी विचारक निर्विशेष संज्ञाहीन और मन रहित बनना चाहते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीव को जीवित रहना चाहिए, सदैव इच्छाओं आकांक्षाओं से युक्त होना चाहिए, किंतु इन्हें शुद्ध बनाना चाहिए, जिससे मनुष्य आध्यात्मिक रूप से आकांक्षा कर सके। प्रत्येक जीव में ये प्रवृत्तियां रहती हैं, क्योंकि वह सजीव है, किंतु भौतिकता से कलुषित होने पर वह भौतिक विपत्ति के हाथों में चला जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यदि मनुष्य जरा मृत्यु के चक्र से बचना चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करता है तो उसके दो लाभ होते हैं। एक तो वह समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त होता है और दूसरे यह कि भगवान की सेवा में लगने से ही मनुष्य की इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ओम अज्ञानाति निरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित स्वयं रूप कदाह्यम तदापी स्वदातिक वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापरकमल श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपां साध जातम सह गण रघुनाथान्वित तम सजीव साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिका।
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानं सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पत रुभ्यश्च कृपा सिंधु हरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश
इच्छाओं से बच कर रहे क्योंकि इतनी घातक है
कि हमारा सब कुछ अन्य दिया। इसके तात्पर्य के पहले ही वाक्य में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कामम हृदय रोगम, कि जो काम है वो हृदय का रोग है, जो काम है वो हृदय का रोग है। कोई कहना चाहेगा कि इसको हृदय का रोग क्यों कहा गया? हृदय में रोग क्यों कहा गया? हृदय में इसलिए कहा गया दैट इज रोग, बट वाई हृदय रोग, वाई हार्ट डिजीज, हेड डिजीज, ब्रेन डिजीज, कुछ भी बोलते हैं, स्टमक डिजीज, क्योंकि हृदय में ही हमारा वास है। आत्मा हृदय में निवास करती है और आत्मा के पास केवल एक ही शक्ति है, वो क्या है? क्या शक्ति है हम सबके पास? केवल एक शक्ति है, हम सब अक्षम हैं, कोई शक्ति नहीं हमारे पास, केवल एक शक्ति है। क्या शक्ति है वो? यस, इच्छा शक्ति, विल पावर, द पावर टू डिजायर। हमारे पास केवल एक ही शक्ति है। अगर हमने इस पावर का, इस इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया तो हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, और अगर इस पावर का, इस इच्छा शक्ति का सही ढंग से उपयोग करेंगे तो हम भगवान के धाम में श्री कृष्ण के साथ नित्य निवास करते हैं। हमारा असली घर वही है, जैसे कि उस दिन में हम चर्चा कर रहे थे, श्वेता शर्मा जब सुनने क्या क्या है, शर्मंती विश्व अमृत से पुत्र आय धामानी दिव्यान पुष्ट, कि हे अमृत के पुत्र सुनो, आपका असली घर आध्यात्मिक जगत में है। तो हम सब भगवान के धाम में, हमारा अधिकार है। भगवान का धाम का वर्णन धर्म संहिता में आता है, चिंता मणि प्रकर सदमसे कल्प वृक्ष लक्षा रतंति सुरभी पाले रंगम लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम नमहं भजामि। कि भगवान का धाम चिंतामणि जेम स्टोन से बना हुआ है, लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं। उसके आगे के श्लोकों में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, कथा गावनम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी, कि वहां पे चलना किसके समान है? नाचने के समान है। वहां पे बात करना गाने के समान है। वहां का जल अमृत के समान है। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत को छोड़कर हम इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया। तो ये हमारी कौन सी स्थिति हुई? डिजीज कंडीशन, ये हमारा हृदय का रोग है। भौतिक जगत में जब किसी को हार्ट डिजीज होती है तो क्या होती है? डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी आर्टरीज 90% ब्लॉक हो गई, 100% ब्लॉक हो गई। तो ये भौतिक इच्छाएं जब हमारे हृदय में है तो ये भी हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही है, कहां जाने के लिए? आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। जो एक रास्ता है हमारा आध्यात्मिक जगत जाने का, उसको ब्लॉक कर रही है भौतिक इच्छाएं, इसलिए इसको बोला गया हृदय का रोग। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि काम और प्रेम में क्या अंतर है। मध्य जिला में वर्णन आता है, आत्म इंद्रिया प्रति वांछा तारे वाले काम, कृष्ण कृष्ण इंद्रिया प्रति इच्छा धरे नाम प्रेम नाम। कि हम अपने इंद्रियों की प्रीति की इच्छा करते हैं वो कहलाता है काम, और कृष्ण की इंद्रियों की पुष्टि की इच्छा कराते हैं वो कहलाता है प्रेम। इसलिए श्लोक बताते हैं प्रयाग में कि प्रेम गोल्ड के समान है और काम आयरन के समान, लोहे के समान। वास्तव में एक आदि रस का हम आस्वादन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, जो कि प्रेम है, जो कि सोने के समान है। और वही जब हम भौतिक जगत में अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके आते हैं तो वही सोना लोहा बन जाता है। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी बीमारी है। यहां लिखा गया है कि भयंकर रोग है, बहुत भयंकर रोग है कि सोने से लोहा बन गया, बहुत भयंकर रोग है। और कोई भी रोग हो, रोग द डिजीज गिव्स अस पेन, द डिजीज गिव्स अस सफरिंग, द डिजीज मीन्स मिजरीज। तो इतना भयंकर रोग है, और केवल इस मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य देह में ही हम इस रोग का निदान कर सकते हैं। हम वापस इस लोहे को सोने में बदल सकते हैं। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि हम इस लोहे को दोबारा सोने में बदले, इस काम को हम दोबारा भगवान प्रेम के प्रति परिवर्तित करें। यही हम सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, जब तक हमारे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा रहेगी, उस भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए हमें इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद जी कहते थे, अगर हमारे हृदय में एक चॉकलेट खाने की छोटी सी इच्छा भी रह गई, तो उस चॉकलेट को खाने के लिए इस भौतिक जगत में दोबारा आना पड़ेगा। तो कोई पूछ सकता है, ऐसा क्यों? चॉकलेट खाने की छोटी इच्छा है, वो भी भगवान पूरी करते हैं। क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं किसके रूप में? परमात्मा के रूप में। और उनका यही कार्य है कि हमारी सब इच्छाओं की वो पूर्ति करें। एंड ही इज वेरी मच परफेक्ट इन हिज जॉब, ही इज इनफॉलेबल, अच्युत। वो तुरंत इज ऑनलाइन, जो इच्छा आ रही है फटाफट अपने आपको अपडेट कर रहे हैं और सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। साथ साथ डिसाइड हो रहा है कि ये इच्छा कौन से जन्म में पूरी होगी, इस इच्छा को डिजर्व किस जन्म में पूरी करने को डिजर्व करता है। तो भगवान अपने काम में परफेक्ट है, वो हमारी हर इच्छा को पूर्ति के लिए बिल्कुल तत्पर खड़े हैं, चतुर्भुज रूप में खड़े हमारे हृदय के पास। यस प्लीज ऑर्डर, व्हाट व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये इच्छा तुरंत पूरी, ये इच्छा तुरंत पूरी, चॉकलेट खाने की इच्छा अभी लीजिए जना, एसी में घूमने की इच्छा अभी लीजिए जना, ये इच्छा तुरंत जना। तो कोई भी भौतिक इच्छा मीन्स जन्म, जन्म का मतलब हमें भौतिक शरीर, और ये शरीर क्या है, दुखदायी है कि सुखदायी है? दुखदायी है। दिस बॉडी इज रिजर्वर ऑफ पेन्स, और हम रिजर्वर ऑफ प्लेजर, कृष्ण को छोड़कर अपने आप को कहां ले आए, रिजर्वर ऑफ पेन शरीर के अंदर, क्या थे, अपनी भौतिक अपनी इच्छा का गलत प्रयोग करके। कहा जाता है बॉडी क्या है, बी ओ डी वाई, बी बी मीन्स बर्थ, ओ फॉर ओल्ड एज, डी फॉर डिजीज, एंड वाई फॉर आवर मोस्ट डियर फ्रेंड यमदूत, यानी डेथ। यानी शरीर है ये, बी ओ डी वाई, बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ। और इस शरीर से आप क्या इच्छा कर रहे हो, लेकिन ऐसा शरीर मिलने के बाद भी हम ये इच्छा करते हैं कि इस शरीर से मुझे सुख मिल जाएगा। और जब कोई दूसरा शरीर देखते हैं जिसमें क्या है, केवल बर्थ ओल्ड एज डिजीज और डेथ, जो कि रिजर्वायर ऑफ पेन्स, रिजर्वायर ऑफ मिजरीज, और फिर इच्छा रखते हैं नहीं 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 शायद ये मुझे सुख दे दे। और यही इच्छा करते करते हम इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े। जब लोगों को बताते हैं कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, तो हृदय इतना कठोर हो चुका है किसी को फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो कलियों के लोग बोलते हैं, किसने देखा अपना जन्म, पता नहीं जन्म होगा या नहीं होगा, खाओ पियो ऐश करो, ई ड्रिंक एंड बी मैरिड, क्या किन चक्रों में पड़ गए, पता नहीं कौन सा जन्म जब होगा देखी जाएगी। एक बार श्री प्रभुपाद जी कहीं कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे, तो एक व्यक्ति फिर स्टूडेंट के पास आया, बोले आप ऐसे बता रहे हो कि माला जन्म में कुत्ते बन जाएंगे, सो व्हाट, इवन इफ आई बिकम अ डॉग, सो व्हाट। प्रभुपाद जी ने कहा, वेरी नाइस, यू हैव माई ब्लेसिंग्स, कुत्ता बनना चाहते हो बनो कुत्ता, यू हैव माई ब्लेसिंग्स। तो लोग बोलते हैं बन जाएंगे कुत्ता क्या फर्क पड़ता है, सुअर बन जाएंगे क्या फर्क है, एंजॉय करेंगे। सुअर की स्थिति मनुष्य से बहुत अच्छी है, किसी सुअर को अपने दुबला पतला देखा है, टेंशन में देखा किसी सुअर को, आराम से हट्टे गट्टे रहते हैं, आराम से कीचड़ में तो रह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। और अगर सुअर को मल भी खाना है तो भगवान इतने दयालु हैं, हम सब जीवों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है कि मनुष्य से सीधा सुअर नहीं बन जाएंगे, बकायदा ऊपर से रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉलेज है, ले जाते हैं कई तरह के नरकों में और खूब अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, इतना मल खिलाते हैं, इतना मल खिलाते हैं, कहते हैं हाँ अब मल अच्छा लगता है, हलवा अच्छा नहीं लगता। जब ये स्थिति आती है चलो जाओ सुअर बनो, और फिर हम सुअर बन के मल खा के खूब भोग करते हैं। तो ये तरह तरह की इच्छाओं के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि जन्म में हमें कितना कष्ट भोगना पड़ता है। जब किसी का जन्म होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, नंदन मारते हैं, कोई स्त्री गर्भवती भी हो जाती है तो बड़ी खुशी की बात बताई जाती है, कि बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इस प्रोसेस में उस जीव को कितना कष्ट सहना पड़ता है, भागवत के तीसरे स्कंध में भगवान कबीर देव माता देवी ने कोई शिक्षा दे कि कैसे कैसे जीव अलग अलग दुनिया से गुजरता है और जीव को मां के गर्भ में कैसे कैसे दुख सहने पड़ते हैं। बताते हैं करुण देव नेत्र नाम जंतु देव पाए थे स्त्रिया विष्ट उद्योग पुलसा देता कनाश्रय करुणा देव नेत्र जंतु देव पाए थे। करुणा मीन्स देव नेत्र का मतलब है परमात्मा की दृष्टि में परमात्मा की देख रेख में जंतु देव पाए थे। जंतु को जीव को शरीर दिया जाता है कैसे शरीर दिया जाता है स्त्रिया प्रविष्ट उदर जबरदस्ती उसको स्त्री के उदर में घुसाया जाता है जबरदस्ती। पुंसा रेखा कणाश्रय किसके माध्यम से घुसता है वो एक पुरुष के वीर्य के माध्यम से। जब स्त्री और पुरुष का संभोग होता है स्पर्म और उपभोग मिलते हैं तो एग फर्टिलाइज होता है तो दसवें दिन से ही उसमें एक मांस का टुकड़ा बन जाता है और पहले महीने में उस जीव का सर विकसित होता है, दूसरे महीने में हाथ पैर निकलना शुरू हो जाते हैं, तीसरे महीने में नाखून बाल स्किन बोन्स फ्लैश ब्लड धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है, चौथे पांचवे महीने में थोड़ा सा मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और फिर बताया गया है कि जो बच्चा मां के गर्भ के अंदर होता है उसका सर पांव की तरफ होता है बिल्कुल उल्टा है सर जैसे कि एक तीर कमान की तरह। किसी जीवित व्यक्ति को जब हम सब किसी पुरुष को या स्त्री को ऐसी स्थिति में रखा जाए तो एक पल भी नहीं रह पाएगा, सर को पांव से छूना है ऐसे तीर कमान की तरह वो उसी में पड़े रहने ऐसे घुट कर और मां के उदर में वो है और आसपास मल मूत्र खून और उसमें तरह तरह के कीड़े जो कि उसको काट रहे हैं भूखे कीड़े उसके त्वचा को काट रहे हैं उसको बहुत बहुत दर्द हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा असहाय स्थिति में दब के आसपास अंधेरा ही अंधेरा घुटन और आसपास कीड़े काट रहे हैं और फिर जब गर्भवती महिला कोई खट्टी चीज खाती है उसे जो एसिड निकलते हैं वो एसिड उस बच्चे के जो टेंडर स्किन बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है उसको जलाती है इट बर्न्स स्किन जल रही है रो रहा है कीड़े मकोड़े काट रहे हैं एक तरफ मां के पेट में जलने वाली अग्नि है दूसरी तरफ कीड़े मकोड़े हैं और मल मूत्र से घिरा हुआ उसका डब्बा उसके अंदर बैठा है चुपचाप ऐसे घुटा हुआ और जब स्त्री चलती है तो उसको धक्के लगते हैं धार धार जैसे कोई जोर जोर से बाहर से डंडे मारो तो ऐसी अवस्था में अंधकार में कीड़े मकोड़ों के बीच में मल मूत्र में पड़ा हुआ और अग्नि के बीच में पड़ा हुआ वो बच्चा परेशान हो जाता है और रोता है भगवान से प्रार्थना करता है और जो बहुत ही सौभाग्यशाली जीव होते हैं भगवान कपिल देव कहते हैं कि उनको पिछले 100 जन्म याद आते हैं और फिर वो चिल्लाकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मैंने कितने बड़े पाप किए हैं क्यों मुझे सजा मिल रही है कृपया करके मुझे इससे आप बाहर निकाल लिया। फिर कहते नहीं नहीं मैं बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि जैसे मैं बाहर निकलूंगा फिर से माया के जाल में आ जाऊंगा फिर से आपको भूल जाऊंगा ऐसी तरह की प्रार्थना करता है। और जब डिलीवरी का समय आता है 9वां या 10वां महीना होता है तो बहुत जोर से ये विंड का प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर के साथ उसको धकेल दिया जाता है नीचे धकेल दिया जाता है उसको इतना जोर का धक्का लगता है कि वह अनकॉन्शियस बेहोश हो जाता है सारी की सारी अपनी स्मरण शक्ति खो देता है। तो देखिए इस भौतिक जगत में बाहर आने से पहले ही मां के गर्भ में हमें कितना दुख सहना पड़ता है बिगनिंग ही इतनी दुखमय है तो आगे की यात्रा कितनी दुखमय होगी आप देखिए। और जब बाहर आता है तो अक्सर बच्चे बाहर कैसे आते हैं हंसते हुए रोते हुए रोते हुए क्यों रो रहा है कभी पूछा है हमने कभी सोचा है क्यों रोता है बच्चा पैदा होता है। समझ लो एक कमरे में हमें बंद कर दिया जाए खूब पिटाई की जाए खूब पिटाई की जाए हमारे 10 महीने के लिए जबरदस्त पिटाई की जाए बंद कमरे में और फिर अचानक कमरा खोल दिया जाए दरवाजा तो कैसे निकलेंगे हम बाहर रोते हुए चिल्लाते हुए बाहर निकलेंगे वही हालत है मां के घर में उसको इतना दुख मिलता है जैसे वो बाहर आता है रोते हुए और कई बार इतना ज्यादा उसको दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर और नर्स परेशान होते हैं बच्चा रोने लगता है उसको चोटियां मारते हैं थप्पड़ मारते हैं चोटियां आपने जब चूक किया पढ़ा के वापस आता है फिर से गुनाह शुरू करता है तो फिर डॉक्टर बोलता है कॉन्ग्रेट्स चाइल्ड इज नॉर्मल। मतलब कि अगर बच्चा रो रहा है तो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि जगत में रोने की स्थिति ही नॉर्मल। चुपचाप बैठा हुआ था तो वो शाम की क्या है अभी तक नॉर्मल नहीं है, खूब मारा पीटा उसको रुलाया नॉर्मल था चाइल्ड इज नॉर्मल, और फिर घर में लड्डू मारते बच्चा ठीक है। ये देखिए ये है जन्म का दुख, इसके बाद भी दुख समाप्त नहीं होते। छोटा बच्चा पड़ा है साबुन छोर से झूले में, मलमूत्र बीच में ही त्याग रहा है, कोई मच्छर आकर उसको काट रहा है, तो कोई भी नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको चाहिए कुछ दे कुछ छोड़ देते हैं, उसको चाहिए मां का वो जबर से दवाई खाने के फूक करके बाहर निकालता है वो, देखे ना बच्चों को सारा सारा बाहर निकालते हैं क्या दे रहे हो मुझे, रोता रहता है उसको परवाह नहीं किसी को, उसका क्या हो रहा है चाहता कि कुछ चिंता कुछ हो रहा है। और फिर थोड़ा और बड़ा होता है फिर पढ़ाई का प्रेशर, कॉलेज में एडमिशन का प्रेशर, विवाह का प्रेशर, परिवार को पालने का प्रेशर, इसलिए इस बहुत ही जगह को क्या बोला गया शास्त्रों में पवर, पवर जानते हैं आपसे परिश्रम, फिर मुंह से झाग निकलना, फिर बंधन, फिर बहर, फिर मृत्यु, बस ये सारा का सारा संघर्ष किस लिए कि एक चॉकलेट खाने की इच्छा, एक छोटी सी चॉकलेट खाने की इच्छा से हमें कितना बड़ा जाना पड़ा। फिर बीच में बुढ़ापा, बुढ़ापा में देखिए कितने कष्ट होते हैं, आर्थराइटिस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, आंखों में कैटरेक्ट, ऊपर नहीं चल सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, घर वाले सोचते हैं कि कैसा बैल है जो बिना किसी काम के खुर खुर करता रहता है, कब मरेगा, बिल साइन कराओ पता नहीं कब जाएगा, हर पे इंतजार कर रहे हैं, पूछते हैं कैसे दादाजी, मतलब पूछना चाहते अभी तक हैं कि चले गए, लोग पूछते हैं कैसे आप इंतजार कर रहे हैं कब जाएंगे छोड़, यूजलेस हो चुका है। फिर मृत्यु करो प्राण बताया गया, मृत्यु में क्या होता है 42,000 बिच्छू एक साथ डंक मारता है। तो इतने बड़े दुख हम सहने पड़ रहे हैं अपनी छोटी छोटी भौतिक इच्छाओं के कारण, ये मत सोचिए कितने बड़े दुख हम सहेंगे कोई बड़ी भौतिक इच्छा की हो, छोटी सी भौतिक इच्छा करनी पड़ेगी तभी ये प्रोसेस है। तो कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है, तभी ऋषभ भगवान भागवत के पांचवें स्कंध में कहते हैं नूनम प्रवता क्रोधी विक्रमा यद इंद्रिय प्रीति आप होती, नूनम निश्चित रूप से ये लोग पागल हैं जो इंद्र तृप्ति की इच्छा करते हैं, निश्चित रूप से वो पागल हैं, क्योंकि इंद्र तृप्ति की इच्छा की तो देखो कितने बड़े कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, निश्चित रूप से पागल हैं। और इन्हीं इच्छा के कारण कहते हैं क्लेश दहा देह, क्लेश वाला देह मिलेगा, ये पागलपन है, तो इससे हमें बचना है। अब बहुत हो गया, ये हमारा मनुष्य जीवन आखिरी जन्म होना चाहिए, श्री प्रभुपाद कहते थे इन भौतिक इच्छाओं से हमें मुक्ति लेनी है। लेकिन हम सब क्या है कि भक्ति में जुड़ते हैं और हमें पता है चार दिनों का पालन करो, ये सब करो, मदिरा पान छोड़ो, ये सब छोड़ो और लग जाओ भक्ति में, बड़े इंसान में आकर लग जाते हैं, जब बाहर जाते हैं इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक युवा युवती घूम रहे हैं आराम से, हंस रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, तो महसूस होता है पता नहीं क्यों कहते हैं दुखावे, दुखावे तो कहीं नहीं लगता, बड़े बड़े आप देखते हैं मॉल्स हैं, लोग हंस रहे हैं, फाइव स्टार होटल्स में जोर जोर से पार्टीज चल रही हैं, इसको तीक में सब हो रहा है, तो कहां दुखा दे, पता नहीं ब्रेन वॉश कर देते हैं दुखा दे, किधर है दुखा दे। और एक इच्छा होती है कि ठीक है ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत तो चलनी चाहिए ना, निकलते कभी कभी अगर तो टीवी मत देखो, मैं कोई सिनेमा नहीं देखूंगा, कोई फिल्मी सॉन्ग्स नहीं देखूंगा, एक छोटा सा क्रिकेट मैच देख लिया क्या फर्क, क्रिकेट मैच देखना भक्ति में कैसे विरोधाभास है, देख लूंगा क्रिकेट मैच क्या होगा, थोड़ा सा न्यूज देख लिया, कुछ एंटरटेनमेंट देख लिया, एक हार्मलेस सीरियल देख लिया, क्या फर्क पड़ता है। तो ये इच्छाएं अंदर हमारी बनी रहती है, ठीक है ना, विदर्भ है ना। और जब गृहस्थ आश्रम में गया वो देखकर दूसरा व्यक्ति की तरक्की कर रहा है, मैं छोटी गाड़ी में घूम रहा हूं, ये डीलक्स गाड़ी में घूम रहा है, होनी तो चाहिए वैसे एक बड़ी गाड़ी भी, बड़ा घर भी होना चाहिए, स्त्रियां देखते हैं दूसरी स्त्री के पास इतने आभूषण है, तो इच्छा उत्पन्न होती है भक्ति करते हुए दीक्षा लेने के बाद भी, इतनी सुंदर साड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, ये गहने मेरे पास भी होने चाहिए, होती है इच्छा। और फिर हम एक कहते हैं कंफ्यूज हालत में रहते हैं, कैसे इन इच्छाओं को कंट्रोल करें, भक्ति भी कर रहे हैं, कैसे इसको करें। देखिए कोई भी इच्छा रह गई हमारे अंदर तो हमें इस साइकिल से गुजरना पड़ेगा, तो हम सबको बड़ा सावधान रहना चाहिए एक एक चीज के लिए। अगर हम कोई टीवी भी देखते हैं, समझ लीजिए बोले मैं क्रिकेट मैच एक खाली स्कोर देखने बस तो मुझे और कुछ नहीं, लास्ट ओवर है देख लो बस, भारत पाकिस्तान का मैच होता है ये तो देख ले दो इतना तो है। तो क्या होता है जब हम मैच देखते हैं बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं तो हमें देखते हुए कुछ भी याद आ सकता है कि हाँ ये मैच मैंने पहले अपने दोस्त के साथ देखा था, तब हम वहां पिक्चर देखने गए थे, फिर हम बियर बार में गए थे, फिर हमने ये किया था वो किया था, पूरा फ्लैशबैक वापस चल पड़ता है। और फिर क्या है ध्याय थे विश्राम तुम सब संगा देखो जाए संगा समझाए थे कामा कामा क्रोधों के बढ़ते क्रोधा बहुत ही समूह असमृति विभ्रमा स्मृति विषा बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा प्राणशी। इसी से क्या होता है कंटेम्प्लेशन शुरू होता है, उससे हमारी अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से स्मृति का नाश होता है, फिर बुद्धि का नाश होता है, फिर फॉल्ट। तो छोटी सी इच्छा से केवल छोटा सा एक दृश्य देखने से हमारा फॉल्ट हो सकता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर जिसके अंदर क्रिकेट देखने की इच्छा है और इसी इच्छा को लेकर उसने प्राण त्याग दिया तो निश्चित रूप से उसका अगला चरण कहां होगा, क्रिकेट पिच पे होगा। 22 गज की पिच होती है ना, पिच में बैट्समैन की क्रीज के सामने वो एक कीड़ा बना होगा, बड़े क्लोजली देखा होगा, हाँ रन आउट हुआ कि नहीं हुआ, फोर्थ उपाय मैं बचूंगा, जो थर्ड उपाय निकला है मैं बोला। तो क्या इच्छा थी कि क्रिकेट देखा, क्रिकेट क्यों देखा, क्योंकि कृष्ण की बंसी से ज्यादा हमें राहुल क्रिकेट का कवर ड्राइव ज्यादा अच्छा लगता है। कृष्ण की बंसी से आकर्षण नहीं है, सचिन तेंदुलकर राहुल क्रिकेट की बैटिंग से ज्यादा आकर्षण, वहां परमात्मा बैठे हैं सर जैसा करेंगे वैसे आपको दिखाएंगे, इतना क्लोज ले जाऊंगा कि आनंद आ जाएगा, क्रिकेट पिच के ऊपर क्रीज के सामने बैठा दूंगा आपको, देखो खूब जितना देख सकते, ये कोई मजाक की बात नहीं है, वास्तव में ऐसा होता है, वास्तव में यही प्रोसेस है। तो हम सबको पूरा ध्यान देना चाहिए कि किस ढंग से हमें करना है, ये जो भी है जितने भौतिक इच्छाएं बोले छोटी सी इच्छा तो है, लेकिन ये उस इच्छा की पूर्ति करना अग्नि में घी डालने के समान है, काम रूप में बोलते हैं दुष्पूरण अनले बचा, ये काम ऐसे बढ़ता है जैसे अग्नि में घी डालना, या फिर हमारे शरीर में कोई इंफेक्शन हो जाए तो बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लाखों के गुणा में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, एक इच्छा पूरी करोगे दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इच्छा भौतिक इच्छा की क्या प्रकृति है कि अगर इसको हम पूरी करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा लोभ, और पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, तो चाहे लोभ हो या क्रोध हो काम हो तीनों किसके द्वार हैं, नरक के द्वार, त्रिविधम नरक से एकदम द्वार नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभत तस्मात एतम करंतजे। तो काम भौतिक इच्छा रखना ही किसका द्वार है, नरक का द्वार है। तो इतने बड़े पॉम्प एंड शो को देखकर हमें अपने आपको बेचारा नहीं समझना चाहिए, एक नया भाग सोचते हैं कि मैं बेचारा बन गया हूं, ये लोग इतना इंजॉय कर रहे हैं, हम बेचारे नहीं हैं, वो बेचारे हैं, उन पर हमें दया करनी चाहिए कि दे आर ऑन द रॉयल रोड टू हेल, बहुत तीव्रता से भाग रहे हैं नर की तरह, हमें उन पर दया करनी चाहिए। निश्चित रूप से इस भौतिक इच्छा से लोभ उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, और काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार है, हमें हर हालत में इससे बचना है। ये जो पॉम्प एंड शो बाहर की जो चमक धमक ग्लैमर है इससे आकर्षित नहीं होना है, ये बहुत बड़ा मोह है। जिस ढंग से माता सीता देवी एक सोने के हिरण से आकर्षित हो गई जो कि है ही नहीं, है ही नहीं, इसी ढंग से हम बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, सुंदर स्त्री देखते हैं, सुंदर पुरुष, इनसे आकर्षित होना नहीं, इससे नहीं मिलेगा। और जितना हमारा मन अशुद्ध होगा हम तरह तरह की कल्पनाएं कर लेंगे, छोटी सी चीज से हम पता नहीं कितना बड़ा सुख की कल्पना कर लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां तो छोड़ो, किसी हमने परफ्यूम की स्मेल को भी स्मेल कर लिया उससे हम विस्मित हो जाते हैं, किसी स्त्री की नेल पॉलिश भी देख लिया तो जो मन बोलेगा कितना आनंद आएगा इसके साथ। ये मोह को विकसित करता है और इस बहुत ही जल्द के लक्षण है मोह भय और शोक। आत्मा आनंद में और भयासा है, आत्मा के अंदर आनंद है ही है, लेकिन जब आत्मा इस आनंद को बाहर ढूंढती है तो इसको शोक मिलता है और इसका मोह बढ़ता है, बड़ी हमेशा भयभीत अवस्था में रहती है। तो इससे हमें बचना है, इस ग्लैमर से अट्रैक्ट नहीं होना, ये सब झूठा है। भगवान कपिल देव कहते हैं कि अगर एक पुरुष स्त्री को भोग की दृष्टि से देख रहा है तो वो स्त्री उस पुरुष के लिए गेटवे टू हेल्प। और स्त्री अगर पुरुष को भोग की दृष्टि से देख रही है, वो पुरुष स्त्री के लिए नरक की टिकट है कि चलेंगे नरक इकट्ठे, वहीं भोग करेंगे। और बताया गया कि अगर हम सुंदर स्त्री को देख रहे हैं भोग की इच्छा से, तो भगवान अपने देव माता बेहूती को बता रहे हैं। देखिए इतना ज्ञान का आवश्यक है कि पुत्र अपनी माता को बता रहे हैं कि अगर एक पुरुष सुंदर स्त्री को भोग की दृष्टि से देख रहा है तो ऐसे ही है जैसे एक अंधा कुआं बहुत ही सुंदर मुलायम हरी घास से ढका हो। बहुत सुंदर मुलायम हरी घास से ढका हुआ अंधा कुआं, आप जाएंगे और कहां गिरेंगे? सीधा अंधे कुएं में। और अंधा कुआं कैसा होता है? अंधकार ही अंधकार, इतना गहरा, इतना गहरा कि उसका नीचे कोई तल नहीं है और कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं है, ऐसा अंधा कुआं है। ये बताया गया ग्रह मेधियों के जीवन को जो केवल स्त्री और पुरुष के लिए भोग करना चाहते हैं, तो इसके इसको हमें हर ढंग से बचना पड़ेगा। और देखिए इस काम से क्या होता है, हमारी बुद्धि, हमारा धैर्य, हमारी लज्जा सब समाप्त। आजकल हम देखते हैं पाश्चात्य देशों की नकल मारते हुए बड़े बड़े शहरों की सड़कों पे गलियों में स्त्री पुरुष खुलेआम घूम रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, जैसे कि कुत्ते और बिल्ली करते हैं। वस्त्र धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आज की सभ्यता में एडवांसमेंट की क्या निशानी है? जितने कम वस्त्र डालेंगे उतने हम मॉडर्न कहलाएंगे। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अगर यही मापदंड है कि जितने कम वस्त्र होंगे उतने आप एडवांस कहलाएंगे, तो सबसे ज्यादा एडवांस तो फिर पशु होंगे कि पशु हमेशा निर्वस्त्र घूमते हैं। तो आप में हिम्मत है तो पशु बन के दिखाइए। एडवांसमेंट की निशानी यही है ना कि जितना ज्यादा हम शरीर को दिखाएंगे उतने हम मॉडर्न कहलाएंगे। तो ये सभ्यता आजकल फैल रही है, कोई लज्जा नहीं, कोई सब बुद्धि को हर ली गई है, कोई ऐश्वर्य को खो दिया है। एक व्यक्ति अखबारों में पढ़ते हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने काम आसान की पूर्ति करने के लिए मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, कुछ भी करने को तैयार है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि विद्वान अति करिष्यति, ये काम इतना बलवान है कि बड़े से बड़े बलवानों की बुद्धि को हर लेता है। जब व्यास देव जी ने ये वाक्य लिखे तो उनके साथी थे जैमिनी ऋषि, उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, विद्वानों की बुद्धि को कैसे हर लेते। तो मैं तुम कहा ठीक है आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं। उस दिन रात को जैमिनी ऋषि जी अपनी कुटिया में बैठे थे और बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। अभी कुटिया का दरवाजा में खटखट आवाज आई, जैमिनी ऋषि ने दरवाजा खोला तो सामने देखते हैं एक बहुत ही सुंदर युवती बिल्कुल बारिश में भीगी हुई। तो जैमिनी ऋषि ने कहा कहिए मैं क्या कर सकता हूं, केवल मुझे आज की रात में आश्चर्य हो। अब स्त्री बहुत सुंदर है, बारिश है, रात का समय है और वो भीगी हुई है। तो जैमिनी ऋषि ने कहा ठीक है, मेरी कोठे के पीछे एक और कमरा है पीछे, आप उसमें विश्राम कर लीजिए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लीजिए, कोई भी आपके कमरे में नहीं आए। बोला ठीक है, स्त्री चल रही दरवाजा बंद कर और जैमिनी ऋषि दोबारा से बैठे। जब बैठे तपस्या करने उन्होंने कुछ क्या हुआ, चिंतन शुरू हो गया। उस स्त्री का रूप बार बार उनके सामने आ रहा है, कोशिश करेंगे बार बार उस सुंदर स्त्री का शरीर का रूप उनके सामने आ रहा है। तो फिर कह रहे हैं बारिश में भीग के आई है, अकेली है, ठंड का समय है, मेरे ख्याल से मुझे उसे कंबल देना चाहिए। करुणा जागृत होगी उसके अंदर, मैं उनको कंबल दे के आता। उन्होंने कंबल उठाया और उसे पीछे कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने पहले बोला था दरवाजा मत खोलना, स्त्री ने दरवाजा खोला। धीरे धीरे दरवाजा खटखटाते खटखटाते जब उन्होंने नहीं खोला, उनका काम इतना बढ़ गया, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। काम का आवेश इतना बढ़ गया कि वो पीछे से गए हट के उस झोपड़ी की छत को फोड़ते हुए अंदर कूदे स्त्री के साथ भोग करने के लिए। और वो स्त्री ने क्या किया, दरवाजा खोलते वो बाहर भागे और जैमिनी ऋषि जी विद्वान पुरुष पीछे भाग रहे हैं उस स्त्री के रात्रि के साथ। और भागते 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 जब उन्होंने स्त्री का हाथ पकड़ा और स्त्री पीछे मुड़ के देखती है वो कौन थे, स्वयं व्यास थे। और फिर व्यास जी क्या बोलते हैं, विद्वान अति करिष्यति, बड़े से बड़े विद्वानों की बुद्धि को ये हर। इतनी कहानियां हैं शास्त्रों में विश्वामित्र मुनि की, सौभद्र मुनि की, ययाति महाराज को देखें। ययाति महाराज को शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया, फिर भी वो इतने निर्लज हो गए कि अपने पुत्रों से कहने की मुझे यौवन वापस दे दो। देखिए एक पिता पुत्रों से यौवन वापस मांग रहा है कि मेरा बुढ़ापा ले लो, मुझे यौवन दे दो। और اپنے مہاراجا جادو سے یوگن لے کے ہزار ورش تک بھوگ کرتے رہے لیکن پھر بھی سنتوشت نہیں, کیونکہ یہ پرگتی ہے, یہی نیچر ہے میٹیریل ڈیزائرز کی, یہ کبھی بھی سنتوشت نہیں ہوں گے. کوئی کہے پریاس تو کرنا چاہیے نا سنتوشت کرنے کا, کئی ایسے گرو ہیں جو بولتے ہیں کہ اتنا ان کو سنتوشت کرو, اتنا ان کو سنتوشت کرو کہ اپنے آپ کو اس کی اچھا ہی نہیں کرے. سمبھوگ سے سمادھی, سمبھوگ کرتے 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 ہم سمادھی میں چلے جائیں. تو اس کا ادھارن یہ ہے کہ آپ کی سموسا کھانے کی اچھا ہے, اتنے سموسے کھلاؤ, اتنے سموسے کھلاؤ, اتنے سموسے کھلاؤ, کسی کا سموسا کھانے کی اچھا نہیں ہوگی, بات صحیح ہے. لیکن اس میں کیا ہوگا, سموسا کھانے کی اچھا نہ ہوگی, رس گلا کھانے کی اچھا ہو جائے گی, رس گلا کھانا کے بعد سموسا کھانے کی اچھا ہو جائے گی. تو کبھی بھی یہ بھوتک اچھائیں سنتوشت نہیں ہو سکتی ہے, اور یہ ہماری بدھی کو, ہماری لجا کو, سب کو ہر لیتی ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مہا پربھو اس کے وشے میں کیا کہتے ہیں. مہاپربھو شیوا سنگر میں جب کیرتن کیا کرتے تھے تو کیول انترنگ پاشنوں کے ساتھ کرتے تھے, تو ایک براہمن جب انہوں نے منع کر دیا اندر آنے کے لیے, اور جب اگلے دن صبح وہ گنگا میں سنان کے لیے گئے تو براہمن بہت کروھت ہوا. براہمن نے اپنا جنیو باہر نکالا اور مہاپربھو کو بولا, میں تمہیں شراپ دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی بھی بھوتک سکھ نہیں ملے گا. مہاپربھو بولا, ہری بول ہری بول, اس سے بڑا آشیرواد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ سب سے بڑا آشیرواد ہے, کوئی ہمیں یہ بول دے کہ آپ کو بھوتک سکھ کی پراپتی نہیں ہوگی, چاہیے آشیرواد. لیکن ہمیں آشیرواد کیسے ملتے ہیں آج کل, سو بیٹھے ہو امریکہ میں جا کے سیٹ اپ ہو جاؤ, میں بڑی گاڑیوں میں کہوں, ایسے ایسے ہمیں آشیرواد ملتے ہیں. تو اس آشیرواد کا کیا ارتھ ہے, وہاں پر تمہیں کیا بولا ہے, یہ بہت ہی جگہ کس کے سامان ہے, اسٹول پیٹ, اسٹول پیٹ ایسا چھتر جس میں ہم لوگ جاگتے ہیں. اگر کوئی ہمیں یہ آشیرواد دے رہا ہے کہ دونوں نہ رہو کتوں پڑھو, بےچارا کیا آشیرواد دے رہا ہے, بڑے رہو مل کے اندر, بڑے رہو بڑے رہو مل کے اندر, باہر مت نکلنا, ویری گڈ, ہم آپ کے دادا ہیں, دادی ہیں, ماتا پتا ہے, شاباش بیٹے, بڑے رہو مل رہے ہیں. وہی ہوا آپ ٹوائلٹ میں گئے, ٹوائلٹ میں پانچ دوں پاپ کر لیا, سندر یہی آشیرواد ہے, خوب میں اندر انجوائے کروں. کیا انجوائے کریں گے, ٹوائلٹ کے اندر, یہ بہت ہی ضروری کھلا ٹوائلٹ سے دیکھی گئی. ٹوائلٹ کا کیا ادیش ہوتا ہے, اندر جائیں اپنا شدھیکرن کریں اور ترنت باہر, ترنت باہر کام ہوتے ترنت باہر. اسی ڈنگ سے بہت ہی جگہ ہم آئے ہیں اپنے شدھیکرن کے لیے, بیسٹ یوز آف بیڈ باہر ترنت ہم یہاں سے نکلنا چاہیے. اور مہاپربھو پتت پاون ہے, ایک یاد رکھیے مہاپربھو کپٹی پاون نہیں ہے, یاد رکھیے اس بات, مہاپربھو پتت پاون ہے کپٹی پاون نہیں ہے. چیتنیہ چیتامرتا میں آتا ہے کہ ہم سب کرشن کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ سب کون کون کرشن کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو بولے اگر کوئی کرشن کو بھی دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے, اور دوسرا بھوتک سکھ بھی چاہتا ہے, چاہتے ہیں بھوتک سکھ, صاف صاف کوئی مان رہے ہیں, تو بولے اگر کوئی کرشن کو بھی دیکھنا چاہتا ہے اور بھوتک سکھ بھی چاہتا ہے, وہ کیا ہے, سب سے بڑا مورکھ. یہ مہاپربھو کہتے ہیں, بولے امی ودیا اے مورکھ, میں تو سب جانتا ہوں لیکن یہ مورکھ ہے, کرشن کی بھی اچھا رکھتا ہے اور بھوتک سکھ کی بھی اچھا رکھتا ہے, سب سے بڑا مورکھ. اور مہاپربھو نے اپنی لیلا میں دکھایا کہ ہم مہاپربھو کے آندولن میں جڑے ہیں اور تھوڑی سی ہم نے بھوتک اچھا کر لی تو مہاپربھو بہت پشٹ ہو جاتے ہیں. اس کا ادھارن کیا ہے, چھوٹا ہری داس, چھوٹا ہری داس جی نے مادھوی دیوی سے کیول چاول لائے تھے, تھوڑا سا درشٹی پات کیا تھا اور مہاپربھو نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. سارے بھکت پریشان کہ چھوٹا ہری داس اتنا سندر کیرتن کرتے تھے, مہاپربھو نے کیوں چھوڑ دیا, مہاپربھو نہیں سنیاس ویش میں ایسا کاریہ کرے گا جاؤ, اور پھر چھوٹا ہری داس نے باہر آتم ہتیا کر دیا. مہاپربھو یہ شکشا دے رہے ہیں, ویسے وہ بہت کرنا شیل ہے, پتت پاون ہے, لیکن کپٹی پاون ہے, تھوڑا سا بھی کپڑ سہن نہیں کر سکتا. ہم سب کو بہت ساودھان ہونا چاہیے, بھکتی میں جڑے ہیں تو ان بھوتک اچھاؤں کی ہمیں کوئی بھوتک سکھ کی اچھا نہیں کرنی چاہیے. مہاپربھو نے رگھناتھ داس کو سمجھ کیا بتایا, جیوے لالسا یہ اتنی اتنی دھائے ششنوتر کرائے کوئی کشن نہیں پائے, جو جیوا کی ترپتی کے لیے ادھر ادھر بھاگے گا اور ششن اور ادھر جنمندری اور ادھر کے لیے ترپتی کے لیے بھاگے گا, وہ کبھی کرشن کو پا نہیں سکتا. مہاپربھو چاہتے ہیں کہ ان کے بھکتوں میں ویراگیہ ہو, مہاپربھو بھکت گنے ویراگیہ پر دھاما, जा रहे थी प्रीत हन गौर भगवान। महाप्रभु देखते हैं कि मेरे भक्तों में गलाने उत्पन्न हो रहा है, महाप्रभु बहुत प्रसन्न है। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी के माध्यम से महाप्रभु ने हम सबको शिक्षाएं दी है। कौन सी शिक्षा दी है? रामे कथा ना करीबे, रामे कथा ना सुनीबे, भला ना खाईबे, भला ना। शिला भक्ति श्याम श्री ठाकुर महाराज जिसकी टीका में कहते हैं कि भला ना खाई गई, भला तुम्हें खाना भी नहीं चाहिए कि खूब खा लिया। ज्यादा खाने से क्या होता है? हमारी जीवा उदर और जननेन्द्रियां एक ही लाइन में, हमारी इंद्रिय की इच्छाएं करती है, तो निश्चित रूप से ठीक है। नहीं बोलते भला ना खाई गई से भी ज्यादा खतरनाक है भला भला पहनना। अगर हम बहुत ही अट्रैक्टिव कपड़े डाल रहे हैं तो बहुत ही सुंदर चमक दमक वाले कपड़े डालने से क्या होता है कि हम दूसरों को अपने प्रति आकर्षित कर रहे हैं। उसको आकर्षित होना चाहिए था किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। लेकिन उसको हम अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो जितने भी हमें प्रभु जी हैं, माता जी हैं, सबसे निवेदन है कि हम जब मंदिर जाएं और जब बाहर भी रहें, हमें बहुत ही साधारण से वस्त्र डालने चाहिए। क्योंकि क्यों हम खुद भी कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़े, दूसरों को भी मदद करें कृष्ण कॉन्शियसनेस में बढ़ने के लिए। और हमें बताया है कि भला ना खाइबे से ज्यादा खतरनाक है ग्राम्य कथा सुनना। क्योंकि ग्राम्य कथा सुनने से हमारी चेतना पोषित होती है। और इन सबसे ज्यादा खतरनाक है ग्राम्य कथा करना, यानी कि प्रजल्पा। कृष्ण को छोड़ के उल्टी सीधी बात है। बोले प्रजल्पा करना वैश्य है, हम प्रजल्पा कर रहे हैं तो एक वैश्य के समान मालिक हो रहे हैं, कृष्ण कथा नहीं है, असत वार्ता हो रही है। तो ये महाप्रभु हम सबको बता रहे हैं कि किस ढंग से हमारा आचरण होना चाहिए। अब समय बहुत कम है, बहुत से इसमें बातें हैं जो मैं नहीं करा पाया। अंतिम भाग में आते हैं कि किस ढंग से हम इसका समाधान निकालें। अगर हम सब ऑनेस्टली एडमिट करें, हम सब दिन आगे प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं भी हैं। और भौतिक इच्छाएं कितनी घातक हो सकती हैं ये हमने चर्चा की। तो कैसे हम इससे मुक्ति पाए? पैगाम महाराज आगे के श्लोक में बताते हैं कि जिसके मन से भौतिक इच्छाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं, उसको भगवान का धन और ऐश्वर्य स्वतः ही मिला। हम यही इच्छा करते हैं ना, ऐश्वर्य मिले, धन मिले, बोले स्वतः ही मिल जाएगा और हम अपने मन से भौतिक इच्छाओं को समाप्त करें। वैसे भी सारा भाषण बोला जाता है ना कि मांगे मिले ना भीख, और बिन मांगे मौके मिले। मांगते रहोगे भीख नहीं मिलेगी, चाहिए 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 तड़पते ही रहोगे, बिना मांगे बिना भौतिक इच्छा के भगवान अपने आप स्वतः ही हमें सब ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो कैसे हम ये मैनेज करें कि हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाए और इस जन्म को आखिरी जन्म रखते हुए हम भगवत धाम वापस जा सकें। देखिए भौतिक इच्छाएं होना गलत नहीं है, हम सब बद जी रहे हैं, नित्य समय से इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, तो भौतिक इच्छाएं तो होंगी ही होंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम कोई प्रयास ही नहीं कर रहे इससे मुक्ति पाने। सबसे बड़ी गलत बात यह है, अगर एक मैंने ईंट उठा ली, छोटी सी ईंट मैंने उठा ली, कोई समस्या नहीं, ईंट का कितना वजन होता है, थोड़ा सा ईंट उठा लिया, लेकिन उसी ईंट को मैं पकड़ के खड़ा रहा, एक ही ईंट को मैं पकड़ के खड़ा रहा, तो कितना बड़ा बोझ, कितना बड़ा ये दर्द और डर मुझे देगा। इसी ढंग से छोटी सी भौतिक इच्छा है, बड़ी है कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं कोई प्रयास ही नहीं कर रहा कि इससे मैं मुक्त हूं, तो वही छोटी सी भौतिक इच्छा इतने बड़े दुख का कारण बन जाए। तो कैसे मुक्ति पाई जाए? तो भागवतों के सातवें स्कंध में अगले ही नारद मुनि जी बताते हैं कि लस्ट को कंट्रोल करने के लिए वन शुड प्लान विद डिटर्मिनेशन। दृढ़ इच्छा से हम इसका काबू पा सकते हैं। इसमें वो उदाहरण देते हैं श्री प्रभुपाद का पढ़े में विश्वनाथ चतुर्थी पाठ जी का। विश्वनाथ चतुर्थी पाठ कहते हैं कि सड़क पर हम जाते हैं, कई सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं, इच्छा होती है भोग करने की, लेकिन अगर हम डिटरमाइंड हैं कि कुछ भी हो जाए मैंने भोग नहीं करना, ये मेरे लिए नहीं है, मैं निश्चित रूप से उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास नहीं। उदाहरण के लिए जब एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमारे सामने बड़े बड़े पकवान क्यों ना रखते, हमने दृढ़ इच्छा ले ली है कि पकवान नहीं खाएंगे आज, निचला एकादशी आज जल नहीं पिएंगे। इच्छा है जल पीने की, इच्छा है राजभोग खाने की, नहीं आज नहीं खाएंगे। इसी ढंग से दृढ़ संकल्प ले लें कि इस जीवन में हम इस स्त्री का भोग ब्रह्मचारियों के लिए स्त्री से मतलब लाइफ टाइम एकांक्षी, और ग्रस्तों के लिए पर स्त्री लाइफ टाइम एकांक्षी। लाइफ टाइम नहीं, हमारे लिए नहीं है, नहीं है, बस सुंदर है, मानते हैं सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो प्लान में डिटर्मिनेशन है, मुझे नहीं चाहिए, इससे बहुत लाभ होगा। दूसरा असत संत्याग, तो संगा संजाए ते काम, जैसा सब होगा वैसी इच्छाएं उत्पन्न होंगी। तो असत संग को हमें निश्चित रूप से त्यागना है। आचार्यगण बताते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक तरफ को हमें असत संग करना है और दूसरी तरफ एक पिंजरा है जिसमें भूखा शेर है, तो कहां जाना चाहिए, असत संग में उस पिंजरे में? पिंजरे में क्यों जाना चाहिए? कैसे खतरनाक है
पिंजरे में जाके, तो पिंजरे से अगर शेर के पास जाते हैं तो हमारे एक जीवन नष्ट हो जाएगा, असत संग में बहुत सारे जीवन
पिंजरे में जाते हैं तो एक ही जीवन का खत्म होगा, और कृष्ण का स्मरण करते हुए प्राण छोड़ेंगे तो भगवत धाम ही वापिस जा सकते हैं, लेकिन सत्संग में जाएंगे तो ये जीवन में या कई जन्म नष्ट हो जाएंगे, इतना खतरनाक है। तो असत्संग को हमें त्यागना है, और ये असत्संग हम अकेले रहते हुए भी कर सकते हैं, अकेले रहते हुए हम चिंतन करते हुए असत्संग कर सकते हैं। अकेले हैं और देखा चलो इच्छा हुई थोड़ा सा इस पोस्टर को देख लेता हूं, कोई भी तो नहीं है, माला कर थोड़ा सा पोस्टर देख लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, बगल में टीवी चल रहा है देख तो लू क्या चल रहा है। तो जब हम अकेले भी हों तो हमें शुद्धता मेंटेन करनी चाहिए। याद रखिए वास्तव में हम कभी भी अकेले नहीं हैं। कौन बैठा हमारे साथ? परम जासूस परमात्मा बिल्कुल नजदीक बैठे, हमारे समीप बैठे, सब कुछ नोट कर रहे हैं। तो जब हम अकेले में भी हमें शुद्धता रखनी चाहिए, नियमों को भूलना नहीं चाहिए। और दूसरा हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत सुंदर प्रार्थना भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं, समय कम से सीधा अर्थ पढ़ूंगा। वो कह रहे हैं ओ माय लॉर्ड देयर इज नो लिमिट टू अनवांटेड ऑर्डर्स ऑफ लस्टी डिजायर्स, कोई इसकी कोई अंत ही नहीं है मेरी इतनी अनवांटेड लस्टी डिजायर्स है, और मैंने इनकी पता नहीं कितनी सेवा की है लेकिन इन अनवांटेड लस्टी डिजायर्स ने मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं की, और मुझे इनको सेवा करने में इन तृप्ति करने में कभी शर्म भी महसूस नहीं हुई, और न ही मेरी कभी इच्छा हुई कि इनको मैं छोड़ दूं, लेकिन अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है और मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। अब मेरी बुद्धि की दिव्यता के कारण मैं इनकी अवांछित इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहता, अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, कृपया करके आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं और मुझे बचाएं। तो इस तरह की प्रार्थना हमें गुरु और गुराम से करनी चाहिए। और तीसरा इसके बाद हमारी भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती भी हैं तो हमें इनको इग्नोर करना चाहिए। एक बार मायापुर में भक्ति विकास स्वामी महाराज जी से मैंने यही प्रश्न पूछा, मैंने पूछा महाराज हम साधना भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं भी हैं और हम कृष्ण को बचाते हैं, आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, तो कौन सी इच्छा हमारी पूरी है? परमात्मा तो है, परमात्मा आध्यात्मिक इच्छा भी नोट करते हैं, हम आध्यात्मिक इच्छा भी करते हैं और हम भौतिक इच्छा भी करते हैं, कौन सी इच्छा पूरी हो गई? तो इस मिलने भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने बताया डिजायर्स यू अल्टीमेट, जिन इच्छाओं का हम सिंचन करेंगे, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम प्रयास करेंगे वो इच्छाएं पूरी होंगी। तो हो सकता है हमारे अंदर प्रति की इच्छाएं हों लेकिन हम उसके लिए प्रयास ना करें। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में यही बताया गया है आप पूरे मानव अचना प्रतिष्ठा समुद्र आहार कि उसमें बताया गया है कि अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं भी हैं लेकिन हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए, जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति का हमें प्रयास नहीं करना। इच्छाएं उत्पन्न होंगी, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए और आभूषण चाहिए, बड़ा घर चाहिए, एक जाना चाहिए, नहीं इसके लिए प्रयास नहीं करना, तब प्रयास को न करता है ये बेकार की बात है, नहीं उसके लिए प्रयास नहीं करना और आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए प्रयास करना, तो धीरे धीरे क्या होगा ये भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं। और फिर बताया गया है नित्यम भागवत से नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, जितने भी हमारे अभद्र हैं हृदय में समाप्त हो जाएंगे प्रतिदिन भागवत का सेवन करने से। तो अगर आप क्लास में आ सकते हैं ठीक है, लेकिन प्रतिदिन हमें भागवत को अवश्य पढ़नी चाहिए, जितना हम आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे उतना हमारी बुद्धि तीव्र होगी और बुद्धि से हम डिटर्मिनेशन से हम इन इच्छाओं को रोक पाएंगे। और फिर है अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग का क्या अर्थ है, क्या मतलब होता है अटेंटिव चैंटिंग, कोई कहना चाहिए? अटेंटिव चैंटिंग मीन्स हियरिंग, हमें एक एक शब्द को सुनना चाहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को सुनना है। सुनने से क्या होता है, उदाहरण है हमारे पास, ठाकुर हरिदास जी के पास वो वैश्य आई, हरिदास ठाकुर जी ने क्या बोला कि प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो, तीन दिन वो बैठे रहे वहां पर, तीन रात को बैठे रहे, और हरिदास ठाकुर जी के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र उसने सुना, सुनने मात्र से उसका इतना शुद्धिकरण हो गया, उसकी सारी की सारी जो काम वासनाएं थी समाप्त हो गई। तो इसी ढंग से अगर हम बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को सुनेंगे तो हमारी भौतिक इच्छाएं भी समाप्त हो जाएंगी। इन भौतिक इंद्रियों की तुलना की गई है जहरीले सांपों से। तो जिस ढंग से एक सपेरा जब बीन बजाता है तो सारे के सारे विषैले सांप भी हैं सरेंडर कर देते, कमजोर पड़ जाते हैं, उन्हें सपेरा बाम आराम से उनका जहर निकाल के उनको बंद कर और गले में डाल के बंद कर। उसी ढंग से अगर हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो ध्यानपूर्वक जप करने से जो हमारी इंद्रिय विषैले सांप की तरह है उनका विष समाप्त होगा, और इन इंद्रियों को फिर हम अपनी इच्छा से भगवान की सेवा में लगा पाए, इंद्रियों से इन प्रति की इच्छा अपने आप समाप्त हो जाती है। मुकुंद माला स्त्रोत में बताया गया है कि अच्छे ढंग से चैंटिंग करने से क्या होता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा आकर्षक वस्तु है, इस भौतिक जगत की सबसे ज्यादा आकर्षक वस्तु हमारे लिए एक पत्थर समान बन जाती है। मुकुंद माला स्त्रोत ने कहा कि भगवान के जप में इतनी शक्ति है शब्द में कि सबसे आकर्षक वस्तु हमारे लिए पत्थर और लकड़ी के समान डेट है, उसके प्रति कोई आकर्षण है। यमुनाचार्य जी अपने प्रार्थना में क्या कहते हैं कि जब से मैंने भगवान आपके नाम का जब शुरू किया है, जब मैं किसी स्त्री के संग के बारे में सोचता हूं तो मुझे क्या मैं थूकता हूं। तो ये सब कहने की बातें नहीं है, इसको हमें प्रैक्टिस करना है। और चैंटिंग टॉर्चर्स द लस्ट, जब हम चैंटिंग करते हैं और हमारे कर्म बिंदु से जब कृष्ण इंद्र प्रवेश करते हैं तो वो काम वासनाओं को खूब टॉर्चर करते हैं, केवल कृष्ण ही इस पर काबू कर सकते हैं और कोई इस पर नहीं कर सकता, कृष्ण का नाम है मदन भगवान, तो केवल कृष्ण ही इसको हटाकर अपना फिर हृदय में कृष्ण वास करें। तो इस तरह से हमें जानना चाहिए कि छोटी छोटी भौतिक इच्छाएं भी हमारे लिए बहुत घातक से हो सकती हैं, और हर एक प्रत्येक साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए, बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, इसका स्पर्श कर रहा हूं, बहुत बहुत जरूरी है। हम जो भी खाएं केवल प्रसाद खाएं, जैसा अन्न वैसा मन, जो खाएं केवल प्रसाद, गामे कथा मत सुने, गामे कथा ना करें, साधारण वस्त्र डालें और उल्टी सीधी चीजों को स्पर्श ना करें, क्योंकि ये सब इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसा इनपुट आएगा वैसा आउटपुट आएगा, जैसा हर एक इंद्रिय का खाना है ना, काम का खाना है सुनना, आंख का खाना है देखना, तो जैसा हम इनके द्वारा भोजन देंगे वैसी हमारी इच्छाएं उत्पन्न होंगी। और बहुत सावधान रहना चाहिए कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, अकेले कभी नहीं हैं, और सब इच्छाओं को नोट कर रहे हैं, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें माँ के गर्भ में बसना पड़ेगा। सोचिए 9 महीने माँ के गर्भ में सहे, 42,000 बिछुओं का डर सहे, बुढ़ापा बीमारी, कितना दुख है, कितना क्लेश है, क्यों मैं इसे मुक्ति पाए, छोटी छोटी मूर्खता के कारण बार बार क्यों इसमें फंसे। लोग बोलते हैं कि हमारा दुख है कि नौकरी नहीं मिल रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, घर बहुत छोटा है, घर में लड़ाइयां होती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये दुख नहीं है, ये तो होता ही रहेगा। असली दुख है जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। मैं सनातन हूं, मैं शाश्वत हूं, क्यों मुझे स्त्री के उदर में जबरदस्ती जाऊं मैं, क्यों क्यों तीर कमान की तरह 10 महीने उल्टा पड़ा रहा हूं और कीड़े मकोड़े मुझे खाते रहे, क्यों क्यों? मेरा अधिकार है आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ खेलना है, मुझे कृष्ण के साथ बातचीत करनी है, हंसना है, उनके साथ नृत्य करना है, ये मेरा अधिकार है, और यहां मैं जबरदस्ती सड़ रहा हूं इन भौतिक इच्छाओं के कारण, और इस भौतिक इच्छा ही हमारे आध्यात्मिक आनंद में सबसे बड़ा सबसे बड़ी बाधा है। जाते हैं हम इसको आनंद की खोज में, लेकिन हमें आनंद परम आनंद श्री कृष्ण से और दूर ले जाते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से हम रहते हो, मैं कहते हैं शूरस से धारा निशितो दूर दिया, कथा उपनिषद में बताया गया उत्तिष्ठ जागृत काव्य मरा के बदला कि उठो जागो, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसमें क्या करनी है भक्ति, और भक्ति किसके समान है शूरस से धारा तलवार की धार पर चलने के समान है। निशितो दुरत्या बहुत कठिन है, दुर्गम पता तक कबया बदलती, बड़े बड़े विद्वानों ने बोला है कि दुर्गम बात है कठिन बात है, लेकिन केवल मनुष्य जीवन में ही इसको कर सकते हैं। इसलिए हमें जागृत होना पड़ेगा और बड़े सावधानी से कृष्ण भक्ति में जुड़ना पड़ेगा, इन सब भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर अन्य विलासिता शून्य होकर भगवान की भक्ति में
आपने कहा कि मैं एक भी डिजायर नहीं बन चुकी हूँ, एक किताब आती है यूट्यूब संस्कृत उसके बारे में
तो मुझे कह रहे हैं कि एक भी इच्छा नहीं होनी चाहिए भौतिक, लेकिन आजकल लोगों ने एक नया टर्न पॉइंट किया है लिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिल्कुल ऐसा बोले हर चीज बैलेंस होकर चले, हद हर चीज की बुरी होती है, ये अक्सर हम सुनते हैं, किसी चीज का एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए, भक्ति करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी नहीं कि टीवी भी छोड़ दो चाय भी छोड़ दो पिक्चर देखना छोड़ दो, ऐसा क्या देखो ना फलाने भी करते हैं भक्ति वो भी भक्ति करते हैं, छोटा थोड़ा बहुत बैलेंस में आगे चलोगे तो गिरोगे नहीं, लोग ऐसे शुरू करते हैं इतना जल्दी सब कुछ छोड़ोगे तो बहुत जल्दी नीचे गिरोगा, धीरे धीरे चलो। आपके दादाजी बने वो भी वैसा करते थे, रोज मंदिर जाते थे लेकिन चाय भी पी लेते थे टीवी भी देखते थे, करते रहो धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन लिमिटेड हो ही नहीं सकता, इस शब्द ही करो काम रूपेण कुंभ या दुष्पूर्ण अनलय अच्छा, जितना सेंस ग्रेटिफाई करोगे उतनी अग्नि और प्रज्वलित होगी और प्रज्वलित होगी, हो ही नहीं सकता, असंभव असंभव है, अपने आप को धोखा देता है, इसकी परिभाषा के विरुद्ध है, इस नेचर के बिल्कुल विरुद्ध है, इसके धर्म के विरुद्ध है, बोले कि चीनी नमकीन हो गई, सेंस ग्रेटिफिकेशन लिमिटेड हो गया, हो ही नहीं सकती लिमिटेड, हवस बढ़ती रहेगी काम वासना और बढ़ेगी, इससे बिल्कुल बचना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें हमें धैर्य नहीं खोना, अगर हम नए नए भक्ति में जुड़े और इसे हम संघर्ष कर रहे हैं तो वरिष्ठ भक्तों के संरक्षण में रहते हुए धीरे 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 हमें ये बैला के लाए धीरे धीरे, और इसमें कोई दुख की बात नहीं है कि प्रभु जी आपने टीवी छुड़वा दिया, कितना बड़ा अत्याचार किया आपने, चाय छुड़वा दी दुखी कर दिया, ये दुख की बात नहीं है, ईश्वर भगवान क्या कह रहे हैं नायम देवो देव बाजे निधो के कष्टम कामों हाथों बिन बुझाने तपो दिव्य पुत्रकम ये न सत्वम शुद्धेद अस्माभ्यम सुखम तो अंता, कि मनुष्य जीवन मिला है दिव्य तपस्या के लिए, उसे क्या होगा शुद्धेद अस्मा हमारा शुद्धिकरण होगा, उसे क्या मिलेगा भ्रम सुखम तो अनंतम अनंत भ्रम सुख मिलेगा, अनंत अनलिमिटेड हैप्पीनेस, और इससे टीवी देखने से एक सिनेमा देखने से कितनी हैप्पीनेस मिलेगी बहुत ही लिमिटेड, और एक भौतिक जगत में क्या है ऑल दिस प्लेयर्स हैव इनबिल्ट पेन, इनबिल्ट पेन के अंदर है ही है, टू साइड ऑफ ए कॉइन, यहां प्लेयर है तो वहां पेन है ही है, निश्चित रूप से जितना आप भोग करोगे उतना आपको रोग मिलेगा निश्चित रूप से, देखते हैं ना एक युवक और युवती के बीच में अफेयर चल रहा है और बाद में जब विवाह होता है क्या होता है कुछ ही सेमेस्टर में कुछ ही दिनों में संबंध विच्छेद, लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज इज एन आई ओपनर, आई ओपनर तब आंखें खुलती, अरे आप ऐसे थे पहले कैसे दिखते थे अब कैसे दिखते हो, ऐसे ही होगा जितना भोग करेंगे उतना भोग मिलेगा, और कुछ
इज अचीव
फॉर एग्जाम्पल इवन मेटीरियल कंट्री सो दे गेटिंग सम अदर बर्थ, परमात्मा नोज यू वॉन्ट मर्सिडीज ओके आई हैव नोटेड इट डाउन, बट At this time you don't deserve it. I'll give you after 100 births, and that too as a dog. In the city of New York. In the city of New York, after 100 births, you'll be roaming around in Mercedes, not as a human being, not as a driver, but as a dog. Because you don't deserve it. You have to do other path, you can't accept it. Sara, sir, papers in your past, updated and closed.